शांति की बात, शांति से शांत वातावरण में अच्छी लगती। किसी कवि ने चार पंक्तियां बरसों पहले लिखी जो आज भी हृदय को हिला देती हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जीवन की यात्रा चल रही है और चलते चलते आज हम सब यहां पहुंचे। इंद्रियां अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है और अहंकार अपना अलग काम कर रहा है। बचपन से लेकर अंत समय तक ये संसारी प्राणी निरंतर दौड़ता रहता है। सुबह से शाम तक तो दौड़ता ही है, रात को नींद में भी चुप नहीं बैठता। माने सारे जगत में सभी के अंदर एक भगदड़ मची हुई है, चाहे बच्चा हो या वृद्ध, मनुष्य हो या पशु, सभी आकुल व्याकुल हैं। और इसीलिए बहुत से भारतवासी संत समागम करते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। विदेशों में भी कुछ लोग इस प्रकार के प्रयास करते हैं। आपको पता है सिकंदर का नाम? सिकंदर का नाम सुना आपने? अलेक्जेंडर द ग्रेट। जिसने 20 साल की उम्र के पहले ही, यानी 19 साल की उम्र तक विश्व को जीत लिया। टीन एजर कहते हैं उसको, जो 13 से 19 वर्ष की उम्र का होता है। उसने उस उम्र में सारे विश्व को जीत लिया। अलग अलग देशों की रानियां थी उसके पास और दूर दूर के खजाने थे। जब भारत को जीतने का विचार मन में आया, तब मां का आशीर्वाद लेने जाता है, क्योंकि शुभकामनाओं की पद्धति हिंदुस्तान में भी है और विदेशों में भी है। वहां भी लोग गुड लक बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। माँ से कहता है कि माँ मैं भारत जा रहा हूं, सुना है वहां अद्भुत खजाने हैं, मैं आपके लिए क्या लाऊं। माँ ने भी भारत के बारे में सुना था, भारत तो एक देशों में भी विशेष देश था, माँ ने गंभीर होते हुए कहा कि बेटा अगर भारत जा रहे हो, मैंने सुना है कि वहां साधु संत रहते हैं, मुझे कोई जड़ रत्न की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है भारत में गरुड़ मणि, चंद्रकांत मणि, पुष्पराज मणि, इंद्रनील मणि, वैडूर्य मणि, मरकत मणि, पद्मराग मणि, सूर्यकांत मणि आदि कई कई प्रकार के रत्न उपलब्ध है, पर यदि तुम भारत जा रहे हो तो साधु को लेकर आना, मेरे लिए एक साधु ले आना। देखिए सिकंदर की मां साधु की कीमत जानती थी पर साधु को नहीं जानती थी, इसलिए उसने कहा कि साधु लेकर आना मेरे लिए। साधु न मेरे होते हैं न तेरे होते हैं, लेकिन मां ने सिकंदर से ये कह दिया और सिकंदर आया, भारत को भी उसने अपने ढंग से जीता और भारत में उसको जीवन में पहली बार होने वाले कई अद्भुत अनुभव हुए। सिकंदर भारतवासियों को देखकर सोचता है कि कहीं ये संत तो नहीं है, क्योंकि भारत के श्रावक भी विदेशियों से बहुत ऊंचा आचरण किया करते थे। विदेशों में जिस प्रकार की स्वच्छंदता है, इंद्रियों के विषय भोगों की दासता है, वैसी स्थिति यहां नहीं थी। अब बात बदल चुकी है, अब तो किसी भी रोड से आप निकल जाओ, मुंह चलाता हुआ कोई ना कोई दर्शन दे ही देगा। ग्रंथों में कथन आता है कि महापुरुष एक बार भोजन करते हैं, मध्यम दर्जे के लोग दो बार और तीसरी श्रेणी बहुत ही निम्न श्रेणी कही गई है। खैर जब भारत से लौटने का वक्त आया तो मां की बात ख्याल में थी, पूछताछ की साधु कहां मिलेंगे, क्योंकि जिन राज्यों को जीता था वहां तो कोई साधु नहीं था। पता चला कि वन के किसी प्रांगण में दिगंबर साधुओं का एक संघ ठहरा हुआ है। अब संयोग देखिए आप, साधुओं में भी दिगंबर साधुओं का संघ, सिकंदर जाता है और अपने कुछ सेवकों को भेजता है कि जाओ साधुओं के मुखिया से कहना सिकंदर ने एक साधु बुलवाया है, सो आप भेजिए। ये निवेदन था उसका सिकंदर। सेवक पहुंचे वहां, तो बहुत से साधु थे। एक साधु के पास बैठकर कहते हैं कि हमारे सम्राट ने एक साधु बुलवाया है, सो आप लोगों में से कोई चलो। वो कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं उस बड़े वृक्ष के नीचे, उन्हीं से आप बातचीत करो। गए, गुरु महाराज ने समझ लिया कि ये तो कोई अहंकारी व्यक्ति है, जो स्वयं न आकर सेवकों के द्वारा साधु बुलवा रहा है। उत्तर दिया उन्होंने कि हम तो हवा के समान हैं, जहां बह गए सो बह गए, हमें कोई बांध नहीं सकता, हमें कोई चला नहीं सकता, और हम किसी के आदेश से उसके पास जाते भी नहीं है। जिसको प्यास लगी है वो स्वयं कुएं से पानी खींच कर पी लेता है। कुआं प्यासे मनुष्य के पास नहीं जाता। ऐसे विचित्र उत्तर को सुनकर सेवकों के माध्यम से सिकंदर ऐसे विचित्र उत्तर को सुनकर दंग रह जाता है और फिर स्वयं उनके पास आता है। कुछ वार्तालाप होता है, बहुत ही संक्षिप्त वार्तालाप। सिकंदर झुकना नहीं जानता था, झुकाना जरूर जानता था, लेकिन इनको झुकाना नहीं जानता था जिनके पास आया था। तो ऐसी कमर पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहता है कि क्यों साधु, आप देर क्यों करते हो? मेरी मां की अभिलाषा है साधु दर्शन की, सो आप एक साधु दे दो हमें। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे सिकंदर, तुम्हारी मां की इच्छा है सो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दशा को देखकर हमें दया आती है। सिकंदर पूछता है कि क्यों? दया की पात्र तो ये दुनिया है मेरे लिए, और आप मुझे दया का पात्र बताते हो? मैं जिस पर दया करता हूं वो जिंदा रहता है, और मैं जिससे खफा होता हूं वो धरती पर रह नहीं सकता, और आप मुझे दया का पात्र कह रहे हो? शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं विश्व विजेता सम्राट सिकंदर हूं, धरती का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अधिक संपन्न प्राणी। आचार्य कहते हैं कि तुमसा दरिद्र मैंने आज तक नहीं देखा। ये बड़ा ही अद्भुत अनुभव था सिकंदर के जीवन का। क्यों? आचार्य कहते हैं कि इतनी अपार संपदा पाकर भी जिसका मन नहीं भरा। उसको मैं संपन्न कैसे समझूं? तुम्हारे जीवन में तो और लगी हुई है, और संपत्ति प्राप्त करूं और कुछ मुझे मिल जाए। तुम ये नहीं देख रहे कि और में तुम्हारे जीवन का छोर आ जाएगा, पर मन असंतुष्ट ही रहेगा। सिकंदर ने इस ढंग से कभी नहीं सोचा था। उसको लगा कि वास्तव में बात तो सच है, इतनी संपत्ति पाकर भी मैं संतुष्ट कहां हुआ? बस मैं अभिमान भर कर लेता हूं। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास क्या शक्ति है? तुम्हारे सारे राग रंग के बीच, तुम्हारे उल्लास के बीच, रात में पार्टीज होती थी उसके यहां, जहाज चलते थे जब समुद्र में, तो जश्न मनाए जाते थे, मदिरा पान और फिर दुनिया भर के और व्यसन वहां होते थे। आचार्य कहते हैं कि इन सब आवाजों के बीच क्या कभी तुमने एक धीमी आवाज सुनी है? सिकंदर पूछता है, कौन सी आवाज? आचार्य कहते हैं कि वो आवाज आती है दूर से, शोर में भी अगर सुनना चाहो तो उस आवाज को सुना जा सकता है। वो आवाज है कि बंधु, तुम्हें भी एक दिन मरना पड़ेगा। अब सिकंदर घुटने टेक कर विनय की मुद्रा में आता है और प्रार्थना करता है, कहता है कि आज मुझे अपनी असली औकात का एहसास हुआ, मुझे पता चला मैं कितने पानी में हूं, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, संग में यदि कोई तैयार हो जाए देख लो। सिकंदर ने सभी महाराजों से प्रार्थना की। एक कल्याण नाम के मुनि थे, उनके अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ कि विदेशों की भटकी हुई जनता किस प्रकार धर्म लाभ प्राप्त करेगी। भारत में तो संत समागम है, वहां लोगों को धर्म का बोध कैसे होगा? वहां जाकर भी धर्म प्रभावना करनी चाहिए। वो गुरु के पास आए, उन्होंने प्रणाम किया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि जाओ, पर प्रणाम करके विदा हुए। जहाज पर आरूढ़ होकर जल यात्रा प्रारंभ की और बीच बीच में जो धर्म चर्चा होती थी उसके माध्यम से सिकंदर को कई नई नई बातें मिली और अंततः एक सूचना आई सिकंदर के पास कि बस कुछ ही समय बाद जहाज घर पहुंचने वाला है, यानी अपने देश वापस लौटने वाला है। सिकंदर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरी मां निश्चित रूप से तट पर प्रतीक्षा करती होगी। और जब मैं मां को साधु दर्शन कराऊंगा तो वे कितनी प्रसन्न होगी। ऐसा विचार करके सिकंदर गदगद हो गया। और कल्याण मुनि ने उसी समय सिकंदर के हाथ पर एक दृष्टि डाली और तत्काल कह दिया कि सिकंदर, तुम्हारी आशाएं आशाएं हैं, लेकिन उम्र सीमित है, मां का दर्शन इस जीवन में तुम प्राप्त नहीं कर सकते। सिकंदर पूछता है कि मैं तो भला चंगा हूं, स्वस्थ हूं, सशक्त हूं, निरोग हूं, क्या कारण है कि मुझे मां के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, समझ में नहीं आता मेरी। बोलते हैं कि तुम्हें एक भयानक रोग होने जा रहा है और बच नहीं सकोगे। पर आकुलता मत करना, और वास्तव में दिन ढला, सिकंदर बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ गया कि रानियों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। बच जाए किसी प्रकार, बड़े बड़े हकीम जो साथ चला करते थे उनको वहां उपस्थित किया गया, नाड़ी देखी गई, सब ने घुटने टेक दिए। बड़े बड़े हकीम हार गए, तब सिकंदर ने अपनी शिथिल आवाज में कहा कि बचा लो, ये जितने खजाने हैं तुम्हें दे दूंगा, जो मुझे बचा लेगा उसके सारे खजाने। लेकिन वो हकीम उत्तर देते हैं, मरते हुए को बचाना हमारे बस की बात नहीं है। रोग का उपचार हम लोग किया करते हैं, लोग कहते हैं कि चिकित्सक की कृपा से हम बच गए, तब सिकंदर के मन में विचार आता है कि इतने बड़े बड़े खजाने और ये विश्व प्रसिद्ध हकीम चिकित्सक मुझे बचाने में असमर्थ है। निराश होकर सिकंदर एक आदेश देता है, मैंने जीवन की दशा पर विचार करते हुए वो धिक्कारता है कि धिक्कार है इस जीवन को, जो 20 साल की उम्र के पहले मैं मरणासन्न हूं और मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। लोग तो बुढ़ापे में मरते हैं, मेरे सामने आज मौत खड़ी है, कोई बचा नहीं पा रहा है। आदेश देता है कि ठीक है, यदि आप लोग बचा नहीं सकते तो मेरा आप सबके लिए एक आदेश है कि जब मेरी शव यात्रा निकले जब मुझे कब्रस्तान पहुंचाया जाए तब कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ हथेलियों को ऊपर किए हुए रखे जाए, ताकि दुनिया ये समझ सके कि मुट्ठी बांध कर आने वाला हाथ पसारे चला गया। कोई कुटुंबी मुझे कंधा न दे, मुझे कंधा देने वाले ये हकीम हो, ताकि दुनिया ये समझ सके कि ऐसे बड़े बड़े हकीम भी सिकंदर को मौत से नहीं बचा सके। और मेरे आगे पीछे ये जो देश देश से लाए गए खजाने हैं वो चले, ताकि दुनिया ये जान सके कि खजाने भी मरने वाले को जिला नहीं सकते। वो वास्तव में वैसा ही हुआ। जब मृत्यु अत्यंत निकट आ गई तब सिकंदर ने कल्याण मुनि की शरण ली, उनका उपदेश, और निश्चित रूप से किसी पिछले जन्म के पुण्य के कारण नमोकार मंत्र भी सुना। और फिर बहुत सी बातें तो उसने सुनी थी धर्म चर्चाओं में, उसने एक भावना भी रखी कि मेरे गुरु का भरपूर सम्मान हो और इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और आज भी वहां मिस्र में कल्याण मुनि के चरण, जैसे शिखर जी में भगवान के चरण स्थापित हैं, वैसे ही वहां कल्याण मुनि के चरण स्थापित है। लेकिन जिसने जीवन भर व्यसन किए थे और हिंसा की थी, और तृष्णा में जिसका मन हमेशा लगा रहा, ऐसे सिकंदर के मुख से कल्याण इस शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता था। सिकंदर कल्याण मुनि को कभी कल्याण मुनि इस प्रकार नहीं कह पाया, वो तो कलैनस बोलता था। देखो, कल्याण का उच्चारण जब इतना कठिन है तो कल्याण होना कितना दुर्लभ होगा। सिकंदर चला गया, और अपने आप को सिकंदर से बड़ा समझने वाले भी अनेकों आए और चले गए। बड़े बड़े चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर आदि महापुरुष भी इस धरती पर आए, मां के ही गर्भ से उत्पन्न हुए और छोटे से बालक के ही रूप में उत्पन्न हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, सारा विश्व उनको मानने लगा, लेकिन अपना समय पूर्ण करके वे सभी यहां से रवाना हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के इस वर्षा योग के प्रथम उपदेश में सबसे पहली बात ये जान लेना कि जब तक अपने भीतर का अहंकार जीवित है तब तक सत्य का परिचय होना असंभव है। सुन रहे हो? कौन सुन रहा है? बहुत ही जटिल प्रश्न है ये, कौन सुन रहा है? अहंकार नष्ट होने पर ही इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है, नहीं तो आप तुरंत कहोगे कि मैं सुन रहा हूं, ये उत्तर नहीं है। आप जिसको मैं कह रहे हैं वो कौन है? अब जिनने कुछ पढ़ा लिखा होगा वो कहेंगे कि आत्मा है। इतना सीधा सरल उत्तर भी नहीं है। भक्ति है, तपश्चरण है, और भी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं। अहंकार को कैसे गलाया जाए और अहंकार किस चीज का? कफन के बाहर खाली हाथ थे उसके, जो विश्व विजेता था ना, लेकिन हाथ खाली थे। तो चार पंक्तियों के माध्यम से बात समाप्त की जाती है। कोई दौलत और हुकूमत पाकर के इतरावे, कोई दौलत और हुकूमत पाकर के इतरावे, यौवन बल सुंदरता में ही कोई फूला जावे, शब्दों का अभिमानी कोई औरों को समझावे, चंद दिनों का ठाठ मुसाफिर फिर डेरा उठ जावे, फिर डेरा उठ जावे।